हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन अगर अमित का काला सच ऑलरेडी अमरेंद्र जी के सामने आ जाता, तो वो भी उनके दिल से, जो पुत्र के मोह ने जन्म लिया था, खत्म हो जाता। तो कहीं ना कहीं तारा ने एक ही पल में सारा प्लान सोच लिया था। खुद को हल्का फुल्का सा महसूस करने लगी थी, तभी अचानक सोनल परी वहां आई। सोनल को देखकर रीत परी और तारा परी दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोनल ने रीत परी की ओर देखा और आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। लेकिन उस वक्त रीत परी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, और तभी करिश्मा जी वहां आई और सोनल की ओर देखकर कहने लगी, क्या हुआ है सोनल बेटी, तुम इस तरह से हाथ बांधकर क्यों खड़ी हुई हो? क्योंकि रीत परी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी और सोनल परी ने रीत परी को गले से लगाया था, तो इसीलिए उसके हाथ रीत परी की कमर पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कि वो हाथ बांधकर खड़ी हुई हो। तभी सोनल जल्दी से ठीक हुई और करिश्मा जी की ओर देखकर कहने लगी, वो कुछ नहीं आंटी जी, वो मैं तो बस ऐसे ही, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा व्यायाम कर रही थी। जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, तारा मन ही मन में मुस्कुराने लगी, लेकिन सोनल परी के चेहरे पर उसे कुछ चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थीं। तो वो उसका पता भी लगाना चाहती थी कि आखिरकार सोनल इतनी ज्यादा उदास क्यों है। तभी उसने मन में सोनल से कह दिया था कि वो अभी थोड़ी देर में उसे उसके कमरे में मिले और कमरे में मिलने के बाद उसे बताए कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। सोनल परी समझ चुकी थी कि वो दुनिया से सब कुछ, सारी बातें छुपा सकती है, लेकिन तारा से वो कुछ भी नहीं छुपा सकती है, क्योंकि वो तो परीलोक की होने वाली रानी परी थी और साथ ही साथ वो उसके बचपन की दोस्त भी थी। तो जल्दी ही सोनल परी तारा परी के सामने मौजूद थी, और तारा ने पहले ही बड़े ही ध्यान से सोनल परी को देखा था और फिर कहने लगी थी, क्या हुआ है सोनल, बता क्या बात है? अब जैसे ही तारा ने बड़े ही प्यार से सोनल से उसकी उदासी का कारण पूछा, तब सोनल परी की आंखों से अपने आप ही बड़े बड़े मोती निकलने लगे थे और वो कहने लगी थी, मैं नहीं जानती तारा, मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन कल रात मैं वो अक्षत को सबक सिखाने के लिए गई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं कौन नहीं। उसे बताया कि मैं एक परी हूं, मैंने उसे बोला भी मैं भूत हूं, चुड़ैल हूं, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। वो मुझसे अब इस तरह से मोहब्बत करता है, कहता है कि अगर उसे जाना भी पड़े तो चली जाए, लेकिन मैं उसके साथ रहूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं अब? तारा बड़े ही ध्यान से सोनल परी की बात को सुन रही थी और कहने लगी, क्या तुम भी अक्षत को पसंद करती हो? तब सोनल ने अपनी पलकें झपका दी थीं और तारा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी थीं, तो फिर इसमें हर्ष क्या है, सही तो कह रहा है अक्षत खुराना, जब तक तुम पृथ्वीलोक पर हो तब तक तुम अक्षत के साथ रह सकती हो, उसके साथ समय बिता सकती हो, इसमें क्या गलत है? तुम अच्छी तरह से जानती हो जैसे ही तुम परीलोक में जाओगी तुम एक बार फिर से क्वारी सोनल बन जाओगी, लेकिन परीलोक से बाहर अगर तुम कुछ भी करती हो तो उसका असर तुम्हारे परीलोक पर नहीं पड़ेगा और न ही किसी को कुछ पता चलेगा, तो तुम उसके साथ रिश्ता बना सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, सोनल की आंखों में चमक आ गई थी और वो कहने लगी थी, लेकिन मैं उसके साथ इन्वॉल्व इसीलिए नहीं होना चाहती हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे उससे फिर दूर रहना पड़े, उसके बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूं, मुझे उससे बहुत गहरी मोहब्बत हो गई है। जैसे ही सोनल ने ये कहा, तारा हैरान थी क्योंकि वो मोहब्बत नाम की बीमारी तो उसे भी बहुत पहले हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं वो भी उसी दिन के लिए डर रही थी जिस दिन उसे अमन से दूर होना होगा। लेकिन अब इस तरह से सोनल के बोलने पर तारा ने उसकी ओर देखते हुए कहा था, अच्छा तुम परेशान मत हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें वाकई अक्षत से सच्ची मोहब्बत है तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि परियों को अगर किसी इंसान से मोहब्बत हो जाए तो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तभी सोनल उस कीमत को सुनकर कांप गई थी और कहने लगी थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूं तारा परी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस वक्त मजबूर हूं। तभी तारा ने सोनल का हाथ पकड़ते हुए कहा था, तुम्हारा दिल इस वक्त जो कुछ कर रहा है तुम करो, अगर तुम अक्षत के साथ रिश्ता रखना चाहती हो तो तुम रख सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ही तारा ने ये कहा, सोनल परी ने आगे बढ़कर तारा को कसकर गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी, मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, बहुत ज्यादा दुखी और परेशानी का शिकार थी, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मेरी काफी हद तक परेशानी दूर हो गई है। ऐसा कहकर उसने तारा को काफी टाइट हग किया था। और जब तारा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, मैं हर हालत में, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी सोनल परी को तारा परी ने कहना शुरू कर दिया था। अभी तक रीत परी ने पूरी रात अमित पर नजर रखी है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। लेकिन उसे सिर्फ इस बात का पता लग पाया है कि मल्लिका अमित के कमरे में सो रही थी। हम इस बात को भी हथियार बनाकर धरा और अमित की शादी रोक सकते हैं। तुम एक काम करो, धरा के पास जाओ और देखो कि वो क्या कर रही है, और साथ ही साथ उसे प्लान के लिए रेडी करो, क्योंकि सारा प्लान हमें धरा से ही करवाना है। हम खुद सामने से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धरा ही है जो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकती है और सबके सामने ये बता सकती है कि उसे काली शक्तियों के मालिक अमित ने अपने वश में किया था। अब जैसे ही सोनल ने ये सुना, वो तुरंत धरा के कमरे की ओर जाने लगी थी। कहीं ना कहीं जल्द से उन्हें अमित का सच सबके सामने लाना था और उसके बाद अमित को एक कड़ी सजा देनी थी। अब तारा परी बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। और हर हाल में वो अब काली शक्तियों के मालिक अमित का सारा सच अमरेंद्र जी और साथ ही साथ अमन के सामने लेकर आना चाहती थी। लेकिन उससे पहले उसने सोचा था कि आखिरकार अगर काली शक्तियों के मालिक अमित ने किसी तरह का कोई जादू किया है तो उसके बारे में पता लगाया जाए। इसके लिए उसने आज का दिन ही उसके पास था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि संगीत के बाद सीधा शादी होने वाली थी और शादी होने के बाद काली शक्तियों का मालिक अमित यहां से जाने वाला था। तो इसीलिए तारा के पास सिर्फ और सिर्फ आज संगीत का ही समय था।
जल्दी ही सोनल परी धरा के पास चली गई थी ताकि उसे आगे का प्लान समझा सके, क्योंकि आज संगीत का दिन था। संगीत के बाद सीधा शादी होनी थी, तो उसके बाद उन्हें समय नहीं मिलने वाला था। तो सोनल उसे समझा देना चाहती थी ताकि किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन आज जैसे ही सोनल परी धरा के कमरे में गई, उसने देखा धरा बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। इतना ही नहीं, उसने आज जरूरत से ज्यादा ही मेकअप कर लिया था, वरना धरा मेकअप सब चीज़ों में बहुत ही कम विश्वास किया करती थी। लेकिन जैसे ही सोनल परी ने देखा कि धरा आराम से मेकअप कर रही है, इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर कुछ अलग ही तरह का भाव था, सोनल की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से धरा के पास आई थी और कहने लगी थी, धरा तुम ये क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम अभी से ही संगीत के लिए तैयार हो रही हो क्या? तभी धरा सोनल की ओर देखते हुए कहने लगी थी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं संगीत के लिए तैयार हो रही हूँ? अरे भाई, मेरा संगीत का फंक्शन है, इतना बड़ा ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है, तो सब लोग तो मुझे देखेंगे ही ना। हाँ, ये बात अलग है कि तारा दीदी ने अपने फंक्शन बीच में घुसकर मेरे सारे लाइमलाइट चुरा ली। जैसे ही सोनल परी ने धरा के मुंह से इस तरह की बातें सुनी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो कहने लगी थी, धरा तुम्हें हो क्या गया है, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अमित से शादी नहीं करनी है, तुम्हें उसे शादी से पहले एक्सपोज करना होगा। इसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ एक जरूरी बात बताने के लिए आई थी कि तुम्हें आगे क्या करना है। तभी धरा ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रोक दिया था और कहने लगी थी, देखिए सोनल जी, मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ काली शक्ति गौरी शक्ति पर ये सब क्या है, लेकिन फिलहाल मेरी तो ये जिंदगी चल रही है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मैं इसे चेंज नहीं करना चाहती, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे ही धरा ने ये कहा, सोनल काफी हद तक हैरान परेशान हो उठी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि धरा इस तरह से ऐसे मौके पर बैकआउट कर जाएगी। तारा इजी तरीके से अमित का सच सबको नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने धरा का सहारा लिया था कि धरा के थ्रू वो सारा सच सबको बताएगी। लेकिन ये क्या, धरा ने बैकआउट कर लिया था। अब सोनल परी और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन धरा ने तुरंत सोनल को कह दिया था कि उसे इस वक्त वो अकेला छोड़ दे, क्योंकि इस वक्त उसे अच्छे से तैयार होना है। वो नहीं चाहती कि उसके संगीत के फंक्शन में तैयारी में उसके किसी तरह की कोई कमी रहे। तो ये कहते हुए धरा ने सोनल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब सोनल परी के पास वहां से बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी ओर तारा जल्दी अपने बेडरूम में तो चली गई थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी से भर उठा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। हालांकि धरा ने बैकआउट कर दिया था, ये बात उसे सोनल बहुत जल्द बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसे कुछ ऐसा लगने लगा था कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। तभी अचानक तारा का ध्यान अमन पर गया था कि आखिरकार अमन कहाँ है, क्योंकि अमन उस वक्त अपने कमरे में नहीं था और बेसिकली अमन तो अपने कमरे में ही होता था। शादी के चक्कर में अमन ऑफिस भी नहीं जा रहा था, उसने ऑलरेडी पूरे स्टाफ को छुट्टी दे रखी थी ताकि अमित को ये न लगे कि अमन उसकी शादी को छोड़कर इस तरह से अपने ऑफिस का काम करने में बिजी है।
तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को सोचते हुए उसने जितने भी ऑफिस में काम करने वाले लोग थे सभी को छुट्टी दे दी थी। थोड़ा बहुत काम वो घर से ही कर रहा था, लेकिन अब अपने कमरे में अमन को ना पाकर तारा काफी हैरान थी। इसीलिए वो जल्दी से अमन को देखने लगी थी, लेकिन उसने पूरे घर में अमन को छान मारा था, लेकिन अमन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। अब तो तारा परी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अमन को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब से अमन की तबीयत अजीब सी हो गई थी, अमन कभी कुछ होता था कुछ और होता था, तब से तारा अमन को अकेला छोड़ने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए जैसे ही तारा हर जगह ढूंढकर अमन को ढूंढ चुकी, तब तारा एक जगह बैठ गई थी और उसने अपनी जादुई शक्तियों का सहारा लिया था। कृपया जादुई शक्ति के द्वारा वो अमन को देखना चाहती थी कि अमन इस वक्त कहाँ है। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करके अमन का विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, तभी अचानक उसकी निगाह अमन पर पड़ चुकी थी। अमन उस वक्त कहीं और नहीं बल्कि अपने ही बंगले की छत पर था, और उस छत पर अकेला नहीं था, मल्लिका उसके साथ थी। अब तो तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अमित इस तरह से काले साई यानी कि मल्लिका के साथ छत पर हो सकता है। वो काफी ज्यादा हैरान थी, इसीलिए जल्दी ही तारा ने अब छत का रुख कर लिया था और जल्दी वो छत पर मौजूद थी। जैसे ही वो छत पर गई, उसने देखा कि अमन बड़ी ही अजीब नजरों से मल्लिका को देख रहा था, और मल्लिका तो शर्माकर एकदम लाल हो गई थी। उसे तो अमन का इस तरह से देखना बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, वैसे भी वो अमन को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करती थी।